नमांसि तेभ्य ॐ नमांसि तेभ्य ॐ नमांसि तेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोहे सवसाहूणम् सिद्धे व्युद्धशयले अच्छत्थ बहित्थ बन्धनुम् मुके बत्तीये अहम् नमिम् पुनो पुनो बंधनम वोच्छम। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेनाचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें बंधन अनुयोग द्वार की अपनी चर्चा चल रही है और अभी हम पृष्ठ संख्या 183 पर आ गए हैं। 183 कल अनंतरोपनिधा और परम्परोपनिधा हमने देखी थी, उसमें तो द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा पहले द्रव्यार्थता देखी थी, वर्गणाओं की संख्या की बात की थी। जैसे परमाणु सिंगल जो है एक प्रदेशी वर्गणा है, कितनी है तो अनंत है। द्विप्रदेशी कितनी है तो द्विप्रदेशी भी अनंत है, परंतु एक प्रदेशी से थोड़ी कम है, तीन प्रदेशी और थोड़ी कम है, उनकी संख्या कम है। प्रदेश तो यानी परमाणु ज्यादा हो गए परंतु संख्या कम है, चतुप्रदेशी उससे भी थोड़ी कम है, एक एक चय से घटता हुआ प्रमाण है। परंतु संख्यात वर्गणा कितनी है ऐसा पूछेंगे तो उसमें तो जो एक प्रदेशी अनंत है तो संख्यात प्रदेशी कहाँ से कहाँ तक है, द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी चतुर्प्रदेशी पंचप्रदेशी उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी तक, उन सब की टोटल अगर करेंगे तो ये जो पहला अनंत हमने देखा, हाँ तो संख्यात गुणा हो जाता है सब टोटल करेंगे तो। ऐसे द्रव्यार्थी वो प्रदेशार्थता की अपेक्षा हमने देखे थे, ये नहीं नहीं द्रव्यार्थता की भी अपेक्षा देखी थी, क्योंकि एक एक में हमने कितनी देखी थी, अनंत थोड़ा कम कम होता जाता है, कितनी बार कम हो जाएगा, फिर भी उत्कृष्ट संख्यात है जो जितनी संख्यात की संख्याएं है, मान लेते 100 है तो 100 बार हमने अनंत का वैल्यू ली थी, वो 100 बार अ अ तो है और उसमें से थोड़ा कम यानी चय धन को हम माइनस करेंगे टोटल, फिर भी वो टोटल जो है वो संख्यात गुणा हो जाएगी। ये द्रव्यार्थता की बात की थी, अब प्रदेशार्थता की बात आज करेंगे। हाँ उससे संख्यात गुणा, सिंगल परमाणु वाले अनंत है उससे संख्यात गुणा वो हो जाएगी, वो एग्जैक्ट उसका गणित भी हमने कल देखा था। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, परमाणु का जो परिणमन है उसको स्वभाव परिणमन कहने में आता है, जब वो स्कंद रूप हो जाता है तब उसी परमाणु का एक एक परमाणु का विभाव रूप परिणाम कहलाएगा, क्योंकि स्कंद में भी प्रत्येक परमाणु भिन्न भिन्न है, फिर भी हरेक का अपना अपना विभाव परिणमन चल रहा है ऐसा कहेंगे। अब यहाँ 183 पृष्ठ पर प्रदेशार्थता की अपेक्षा देखेंगे।
देखिये यहाँ विशेषता ऐसी है, पुद्गल का स्वभाव ऐसा है कि एक बार स्वभाव रूप परिणमित हो गया तो दोबारा विभाव रूप परिणमित होगा, विभाव रूप से फिर स्वभाव रूप हो सकता है, फिर विभाव रूप हो सकता है। लेकिन जीव द्रव्य का ऐसा है, एक बार स्वभाव रूप परिणमित हो गया सिद्ध हो गया तो फिर दोबारा वो विभाव रूप नहीं परिणमेगा, सिद्ध होने के बाद दोबारा उसका विभाव रूप परिणमन नहीं होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। और बाकी चार द्रव्य तो स्वभाव रूप से ही परिणमित होते हैं, उनको विभाव रूप परिणमने का कोई प्रसंग ही नहीं है।
अब देखते हैं, यहाँ हम प्रदेशार्थता की बात करेंगे, कल द्रव्यार्थता यानी वर्गणाओं की संख्या देखी, अब उन वर्गणाओं में प्रदेशों की संख्या अगर देखेंगे तो कितनी होगी उसकी बात आज करेंगे। देखो हम पढ़ते हैं यहाँ चौथी लाइन से 183 पृष्ठ पर। अब प्रदेशार्थता की अपेक्षा अनंत रूप निधा का कथन करते हैं। यथा परमाणु पुद्गल वर्गणा प्रदेश से द्विप्रदेशी वर्गणा प्रदेश विशेष अधिक है। हमने द्रव्यार्थता की अपेक्षा क्या देखा था? थोड़ा कम है ना, क्योंकि सिंगल वाली जो जितनी वर्गणाएं हैं, जितने परमाणु हैं, उससे द्विप्रदेशी स्कंध टोटल कितने हैं, तो थोड़े कम हैं। परंतु यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रदेशार्थता की, क्योंकि एक एक वर्गणा में दो दो प्रदेश है। यानी ऐसे देखा जाएगा तो वो थोड़ा कम को हम गौण करेंगे तो डबल हो जाएगी ना। सिंगल वाली अनंत अनंत वर्गणाएं हैं, तो हर एक सिंगल वाली है तो जितनी द्रव्य वर्गणा की संख्या है मल्टीप्लाइड बाय प्रदेशों की संख्या, तो प्रदेश भी जितने वर्गणाएं उतने ही प्रदेश भी हो गए। द्विप्रदेशी में क्या है, जितनी वर्गणाएं होगी उसको दो प्रदेशों से गुणा करना, तो टोटल प्रदेशों की संख्या आएगी, तो दुगुनी से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें से वो चय माइनस करना है। देखो इसको फिर पढ़ते हैं। यथा परमाणु पुद्गल वर्गणा प्रदेश से द्विप्रदेशी वर्गणा प्रदेश विशेष अधिक है, कुछ कम दूने हैं। विशेष अधिक में क्या लिया? दूने से कुछ कम, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इनसे त्रिप्रदेशी वर्गणा प्रदेश विशेष अधिक है, कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण अधिक है। यानी दूसरे से तीसरे कितने हैं? दो से तीन कितने हैं? तो डेढ़ गुना होता है ना, दो से तीन, परंतु उसमें वो चय और एक कम करना, इसलिए उसको कहते हैं कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण अधिक है। पहले से कंपेयर नहीं करना है, दूसरे से तीसरा कंपेयर करना। इनसे चतुप्रदेशी वर्गणा प्रदेश विशेष अधिक है, कितने अधिक है? कुछ कम त्रिभाग अधिक है। यानी तीन प्रदेशी जितनी टोटल प्रदेशों की संख्या है, उससे चतुप्रदेशी कितने हैं? तो त्रिभाग अधिक है। ये समझ में आता है ना, कुछ कम त्रिभाग क्यों कहा? ये कुछ कम की अपेक्षा हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो एक प्रदेशी हम मान लेते 1000 परमाणु हैं। अभी हजार हजार को हम कांस्टेंट रखेंगे, उसमें से कुछ कम होते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर अभी हजार के बदले वहां 990 हो जाएगी। अभी उसको हम गौण करेंगे, कुछ कम को गौण करेंगे, तो द्विप्रदेशी कितनी हो जाएगी? हजार ही वर्गणा अगर मानेंगे तो 1000 × 2 प्रदेश उसके 2000 हो जाएंगे, परंतु उसमें कुछ कम लिखाना। अब ये तीन प्रदेशी जो है वो कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाएंगे। तो 2000 से 3000 कितना है? डेढ़ गुना है ना, हाँ। यानी उसके लिए कहते द्वितीय भाग से अधिक है। 2000 का द्वितीय भाग कौन? 1000। 2000 में 1000 मिला दो, उतने हैं। अब उसके पीछे कुछ कम लगा दो। अब तीन से चतुर कितने अधिक है? तो ये 4000 है। 3000 कंपैरिजन में 4000 क्या है? 1/3 ज्यादा है। 3000 में उसका 1/3 1000 मिला दो तो 4000 होता है, परंतु कुछ कम लगा देना उसके पहले, क्योंकि हर एक की संख्या वो हजार हजार नहीं है, कुछ कम होती चली जा रही है। कुछ कम त्रिभाग अधिक है। इनसे पंच प्रदेशी वर्गणा के प्रदेश विशेष अधिक है, कितने अधिक है? कुछ कम चतुर्थ भाग अधिक है। यानी पंच प्रदेशी मान लेते हम 5000 है, तो 4000 की अपेक्षा 5000 कितना है? तो 4000 का 1/4 1000 उसमें मिला दो, इतने ज्यादा है। उसके पहले कुछ कम हम लगा देंगे। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने तक विशेष अधिक होकर जाते हैं, किंतु विशेष का प्रमाण संख्यात प्रदेशी वर्गणाओं में संख्यात्वे भाग प्रमाण है। जैसे चतुप्रदेशीय संख्यात प्रदेशी है ना, तो उसका चौथा भाग अधिक, चतु से पंच है वो चौथा भाग अधिक, अभी 10वें स्थान पर है, और फिर 11वां कितना ज्यादा है तो उसका 10वां भाग अधिक है, ऐसा कहेंगे। तो जहां तक संख्यात वाली संख्यात प्रदेशी है वह संख्यात्वा भाग अधिक है कहेंगे। असंख्यात प्रदेशी वर्गणाओं में अनंतर अधस्तन वर्गणा प्रदेशों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। क्या? विशेष का प्रमाण। असंख्यात्वे भाग प्रमाण प्रदेश नहीं है, विशेष का प्रमाण असंख्यात्वा भाग से अधिक है। ये विशेष का प्रमाण जो है ना पहले ऊपर, वो दोनों वाक्यों के लिए लेना है। असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाकर प्रदेश यवमध्य होता है। प्रदेश यानी वो तो अधिक विशेष अधिक विशेष अधिक होते चला गया है। पुनः प्रदेश यवमध्य के ऊपर ध्रुव स्कंध में अनंत वर्गणाओं के व्यतीत होने तक वर्गणाएं विशेष हीन होकर जाती हैं। प्रदेश यवमध्य किसे कहना, जहां प्रदेशों की संख्या विशेष अधिक होती चली जाती है। पहले तो क्या था, ये संख्यात प्रदेशी थी वर्गणाएं, फिर असंख्यात प्रदेशी, उसके बाद अनंत प्रदेशी हो जाती है, और उसके ऊपर जाए सारी जो आहार वर्गणाएं वगैरह वगैरह जो है ध्रुव स्कंध वर्गणा तक जो वर्गणा है उसमें तो कह दिया कि असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने पर प्रदेश यवमध्य होता है, और उसके बाद असंख्यात प्रदेश में ही होगा यवमध्य, क्योंकि हमने उसी में वो गुणाने की भी बात देखी थी। ये जघन्य परितानंत इतने उसके अर्धच्छेद प्रमाण स्थान जाते हैं, तो यहाँ असंख्यात प्रदेशी वर्गणाओं में ही यवमध्य है, यानी वहां तक प्रदेश बढ़ते बढ़ते चले गए, और उसके आगे क्या होगा, प्रदेशों की संख्या हीन होती चली जाएगी। यानी ये हीन कहाँ तक चली जाएगी, तो ध्रुव स्कंध में अनंत वर्गणाओं के व्यतीत होने तक प्रदेशों की संख्या कम होगी। मात्र विशेष असंख्यात्वे भाग प्रमाणे, विशेष तो असंख्यात्वे भाग असंख्यात्वे भाग ही रहेगा, उतना ही उसका प्रतिभाग क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग है। यानी पहले थोड़ा विशेष अधिक होता चला गया, यव मध्य के बाद उतना ही विशेषहीन होता गया, उसके ऊपर ध्रुव स्कंध में अनंत वर्गणाओं के व्यतीत होने तक सब वर्गणाएं संख्यात भागहीन होकर जाती है। पहले असंख्यात भागहीन होकर गए थे, अभी संख्यात भागहीन। आगे ध्रुव स्कंध वर्गणाओं के समाप्त होने तक जानकर ले जाना चाहिए, ये प्रदेशार्थता की बात चल रही है। अब अनंत रूप निधा में द्रव्यार्थता की संदृष्टि विधि को बतलाते, स के ऊपर बिंदी लगाना, ये था संदृष्टि में, वो में का ऊपर चला गया, संदृष्टि में परमाणु द्रव्य वर्गणा 256 लेनी चाहिए। अभी हमने जैसे मान ली ना 1000, उसके बदले अभी वो उनकी संख्या देखेंगे 256। पुनः ध्रुव स्कंध में असंख्यात भागहीन वर्गणाओं में से अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक विशेष श को मात्रा देना, विशेष हीन क्रम से ले जाना चाहिए, वह भी संदृष्टि में 9 लेनी चाहिए। वो विशेषहीन कहाँ तक, तो 9 होने तक ले जाएंगे, 256 से शुरू करके 9 तक चले जाएंगे। शेष वेदना द्रव्य विधान की अपेक्षा कही गई विधि को स्मरण करके कहना चाहिए। ये वेदना द्रव्य विधान क्या है, ये भावों के वेदन का सवाल नहीं है यहाँ। कर्मों में हमने निषेक रचना देखी थी, वेदना कर्म को कहते हैं। पहले अपना वेदना अधिकार हुआ ना, पूरा वेदना खंड हुआ था, और यहाँ वर्गणा खंड शुरू है। तो वेदना द्रव्य का अर्थ होता है वेदना की जो संख्या, जो परमाणुओं की संख्या हमने देखी थी कर्मों में, निषेक रचना में जैसे हम देखते हैं गुनाहनी गुनाहनी प्रति आधा होता है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए, ऐसे कहते हैं। उसमें से डिफरेंस क्या होगा वो बता रहे हैं। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर गुणहानि अध्वान और निषेक भागहार का प्रमाण असंख्यात लोक है, वहाँ कर्मों में गुणहानि का प्रमाण अलग है, वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण गुणहानि होती थी। और निषेक भागहार किसको कहते हैं याद है क्या, भूल गए, निषेक भागहार, दो गुणहानि को निषेक भागहार कहते हैं। तो वहां का गुणहानि अध्वान अलग था, निषेक भागहार अलग था, और यहां भी, यहां तो असंख्यात लोक है। अब प्रदेशार्थता की अपेक्षा कथन करने पर पूर्वोक्त संदृष्टि को, स के ऊपर बिंदी लगाना, स्थापित करके वहां की परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा को एक परमाणु से गुणित करने पर उसके प्रदेशों का प्रमाण होता है। ये जो 256 से लेकर 9 तक जो बताई है ना, वो क्या बताई है, वर्गणायों की संख्या बताई है, वो विशेषहीन विशेषहीन क्रम से होती चली गई थी। यानी 200 राइट साइड पर 185 पेज पर बीच वाला जो वहाँ जो फिगर है, प्रथम गुणहानि की नीचे से ऊपर तक पढ़ना, 256, 240, 224, 208, 192 आदि आदि, ऊपर विशेषहीन एक एक चय घटता चला गया। द्वितीय गुणहानि ऊपर से नीचे पढ़ना, ऊपर पहली वर्गणा 128 है, नीचे 72 तक आए। तृतीय गुणहानि नीचे से ऊपर पढ़ना, ये वो ऐसे कंटिन्यूएशन में लिए हैं 185 पेज पर बीच में। हमेशा जैसे हम यही फिगर्स थी हमारे, एक सौ पिचासी पेज नहीं है, आगे पीछे हुए होंगे। हाँ ऐसे ही सब में मिसिंग होते कुछ, मेरे में बहुत मिसिंग थे लास्ट बुक में। चलो देखो, पहले जो अभी हमने देखी थी 256, हमने क्या मान लिए है, परमाणु पुद्गल द्रव्य की वर्गणाओं की संख्या मान ली है, तो उसको द्रव्यार्थता कहा। उनमें देख लेना, हाँ इसको द्रव्यार्थता कहा, द्रव्यार्थता यानी वर्गणाओं की संख्या। अब हमको प्रदेशार्थता देखनी है, द्रव्यार्थता की बात ख्याल में है ना, गुणहानि में होती है। अब आगे पढ़ेंगे, देखो 256 से लेकर कंटिन्यूअस नीचे से ऊपर तक कम होते चले जाए। 256 कहाँ है, आप ऊपर पढ़ रहे हैं, नीचे बीच वाला, और कम होते गया है, 240 है, 224 है, 208 है, 192 है। अब दूसरी गुणहानि कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर से नीचे तक है। यदि हम पूरा एक कॉलम बना देते ना सभी गुणहानियों का, तो एक के ऊपर एक स्थापित कर सकते थे। अब यह कंटिन्यूटी बताने के लिए उन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से बताया है। तो ये तो ख्याल में आवे ऐसी है, ये तो पांच गुणहानि यहाँ बताई है। ये द्रव्यार्थता बताती है, वर्गणाओं की संख्या बताती है। अब हमको असंख्यात लोग, असंख्यात लोग जाने पर वो आधे होता है, ऐसा हमने देखा था ना, वो असंख्यात प्रदेशी में आता है, वो पहला स्थान आधा होने का कल पढ़ा था हमने। हाँ असंख्यात लोग, तो असंख्यात लोग जाने पर वो आधा आधा होता है। तो ये अध्वान अभी हमने देखा था ना, गुणहानि का अध्वान असंख्यात लोक है, तो निषेक भागहार कितना होगा, दो गुना असंख्यात लोक, यानी उसी को भी असंख्यात लोक ही कहेंगे हम। अब हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो 256 एक प्रदेशी 256 वर्गणाएं हैं, तो उनमें प्रदेश कितने होंगे, 256, यही हमने पढ़ा अभी ये वाक्य, हम फिर पढ़ते इसको। देखो ऊपर से छठी लाइन में, अब प्रदेशार्थता की अपेक्षा कथन करने पर पूर्वोक्त संदृष्टि को स्थापित करके, पूर्वोक्त संदृष्टि यानी 256 से लेकर 9 तक, इस संदृष्टि को स्थापित करके वहां की परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा को एक परमाणु से गुणित करने पर उसके प्रदेशों का प्रमाण होता है। ये ख्याल में आई बात? 256 मल्टीप्लाइड बाय एक एक प्रदेशी तो 256 हो जाएगी। द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा को 2 से गुणित करने पर द्विप्रदेशी वर्गणा के प्रदेशों का प्रमाण होता है। अभी हमने वो 1000 मान लिए थे ना द्विप्रदेशी, तो 2000 हो जाएगी। त्रिप्रदेशी वर्गणा को 3 से गुणित करने पर त्रिप्रदेशी वर्गणा के प्रदेशों का प्रमाण होता है। जैसे देखो, यहाँ समझाने के लिए भी 256 है और द्विप्रदेशी 240 मान लेते हैं, तो 240 को वहां ऊपर 480 कर दिए, क्योंकि एक 6 पहले ही घटाया था। यहाँ ऊपर के टेबल में देखना, नीचे के टेबल में द्रव्यार्थता देखना और ऊपर के टेबल में प्रदेशार्थता देखना। 224 नीचे द्रव्यार्थता है, ये 224 क्या है? त्रिप्रदेशी है, उसको 3 से गुणा करेंगे तो 672 आते हैं। 208 है, वो क्या है? चतुप्रदेशी है। 208 गुणा 4 तो ऊपर 832 आ गए। 192 है, वो पंचप्रदेशी है, उसको 5 से गुणा करेंगे तो 1056 आते हैं, 1056। 176 को 6 से गुणा करेंगे, 1 2 3 192 को 5 से गुना किया। हाँ, ये ऊपर नीचे हो गए कुछ, 9 5 10 ऐसा लेकर। अब उसे 176 को हमने 6 से गुना किया, 1056 आ गए। 160 को 7 से गुणा किया, 7 कहाँ आए वहाँ? 7 0 7 42 2 4 4 7 4 11 हाँ, 144 लास्ट वाली 8, ये 1152 लिया है, बीच वाली लिए नहीं उन्होंने। सोलह साथी 12 उधर से, ये 1120 है। हाँ, 1 से 8 अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। पहले तो हमने संदृष्टि में देखा, अभी हम पढ़ते हैं। देखो, त्रिप्रदेशी वर्गणा को 3 से गुणित करने पर त्रिप्रदेशी वर्गणा के प्रदेशों का प्रमाण होता है। चतुप्रदेशी द्रव्य वर्गणा को 4 से गुणित करने पर चतुप्रदेशी वर्गणा के प्रदेशों का प्रमाण होता है। इस प्रकार ध्रुवस्कंध वर्गणाओं के समाप्त होने तक 5 गुणे आदि के क्रम से ले जाना चाहिए, ध्रुवस्कंध के समाप्त होने तक। इस प्रकार गुणन विधि के करने पर द्रव्यार्थता की अपेक्षा जो परमाणु वर्गणा से लेकर गुणहानि अध्वान कहा है, वह ऊपर सब जाकर पुनः दूसरी गुणहानि का गुणहानि का सकलार्ध ऊपर जाने पर उस स्थान में 2 वर्गणा स्थानों में एक साथ लब्ध हुए 2 यवमध्य होते हैं, उनकी यह संदृष्टि है, संदृष्टि मूल में दी गई है। ये देखो यहाँ जो संदृष्टि बताना चाहते हैं 256 से 1152 तक ले गए ऊपर की संदृष्टि में, और फिर दूसरे गुणहानि में भी 1152 आ गए, और फिर वहाँ से विशेष नहीं यवमध्य, दो यवमध्य होते हैं संदृष्टि मूल में दी है, यही जो यवमध्य, दो यवमध्य होते हैं 1152 है। आगे भी है, हम विशेष अर्थ पढ़ेंगे तो आगे के पेज पर भी इसका अर्थ बताया है, उसको फिर देखते हैं। देखो विशेषार्थ मयंक भाई के उसमें है ना, हाँ विशेषार्थ, द्रव्यार्थता की अपेक्षा संदृष्टि परमाणु द्रव्य वर्गणा 256, अभी जो हमने पढ़ा उसी को फिर दोबारा बता रहे हैं, और अंतिम वर्गणा 9 बतलाई है। इसकी रचना वेदना द्रव्य विधान की अपेक्षा इस प्रकार है, जो ये बीच वाला टेबल है जो हमने पहले देखा था, इस संदृष्टि में 256 परमाणु वर्गणा की द्रव्यार्थता है, 240 द्विप्रदेशी, 224 त्रिप्रदेशी, 208 चतुप्रदेशी, 192 पंचप्रदेशी वर्गणा की द्रव्यार्थता है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। प्रदेशार्थता का प्रमाण जानने के लिए 256 को 1 से, 240 को 2 से, 224 को 3 से, 208 को 4 से गुणा करने पर 256, 480, 672 और 832 प्रदेशार्थता का प्रमाण आ जाता है। इसी प्रकार आगे भी जानकर गुणा करने से प्रदेशार्थता का प्रमाण आ जाता है। संदृष्टि मूल में दी है, जो ऊपर का टेबल है, इसमें 1248 की यवमध्य संज्ञा है, क्योंकि 48 के बाद वो कम हुए ना। देखो ये 1152 के बाद 1200, 1232, 1248, फिर 1248, फिर उसमें से कम होते गए आगे। यहाँ पर प्रथम गुणहानि की अंतिम वर्गणा और द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गणा की संदृष्टि है। वास्तव में ये दोनों वर्गणाएं समान हैं। देखो इनमें वर्गणा ज्यादा है और प्रदेश कम है, सॉरी प्रदेश यहाँ कम है ना। अभी हम यहाँ तक 8 प्रदेशी तक आ गए, 8 प्रदेशी वाली है, और 8 प्रदेशी में 1152 हो गए, और आगे क्या है, आधा हो गया है प्रमाण, और उसमें प्रदेश कितने हो गए, हाँ 9 प्रदेशी है, 9 प्रदेशी है, परंतु वहाँ प्रदेशार्थता यानी वो जो चय घटता गया है 128 को 9 से गुणा करो, 144 को 8 से गुणा करो, वही बात है ना, क्योंकि प्रदेश बढ़े हैं परंतु द्रव्य यानी वर्गणाओं की संख्या कम हो गई है, तो दोनों जगह 1152 आ गए। इनसे ऊपर की वर्गणाएं यवमध्य के प्राप्त होने तक विशेष अधिक है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। पुनः यवमध्य के ऊपर ध्रुवस्कंध वर्गणा की असंख्यात भागहीन और संख्यात भागहीन द्रव्य वर्गणा के प्राप्त होने तक विशेषहीन क्रम से ले जाना चाहिए। एक बार वो यवमध्य आने के बाद वो विशेषहीन क्रम से आगे चला जाएगा। ऊपर जो लिखा है ना संदृष्टि में, देखो संदृष्टि में दूसरी गुणहानि में पढ़ो, पहली संख्या क्या है ऊपर के टेबल में, हाँ उसके नीचे फिर 1232 1248, तो 1152 दोनों जगह समान है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। नीचे से तीसरी लाइन, ऐसा करने पर यवमध्य के पूर्व असंख्यात द्विगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है, होती को बराबर करना है। यानी जहाँ यवमध्य आता है उसके पहले कितनी गुणहानियां बीत जाती है, हाँ तो असंख्यात गुणहानियां हो जाती है। दुगुण वृद्धि कहो या एक गुणहानि कहो, एक ही बात है। यवमध्य के पूर्व ये गुणहानियां द्रव्यार्थता की अपेक्षा डेढ़ गुणहानि के अर्धच्छेद प्रमाण होती है। एक गुणहानि कितनी देखी हमने, असंख्यात लोक, क्योंकि असंख्यात लोक स्थान जाने पर आधा हो जाता है, तो एक गुणहानि का प्रमाण असंख्यात लोक, और डेढ़ गुणहानि के जो अर्धच्छेद हो गए उतनी ही गुणहानियां बीत जाने पर यवमध्य आता है। हमने पहले देखा था, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था संदृष्टि के पहले, इसको पढ़ा था 183 पृष्ठ निकालना, नीचे से पांचवी लाइन छठी लाइन अंत में, असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाकर प्रदेश एवं मध्य होता है। और अभी हमने क्या देखा, डेढ़ गुणहानि प्रमाण, डेढ़ गुणहानि के अर्धच्छेद प्रमाण होती है। क्या गुणहानियां, गुणहानि कितनी हो जाती है उसके अर्धच्छेद प्रमाण, यानी स्थान कितने हो गए उतने अर्धच्छेदों को आपस में गुणा करो उतने स्थान हो गए, वो भी कितने हो जाएंगे, असंख्यात लोक हो जाएंगे, क्योंकि असंख्यात लोक का ही अर्धच्छेद निकाले हमने, ख्याल में आता ना, गणित वही है। असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने पर वहां यवमध्य आता है। यहां वही बात बता रहे हैं, डेढ़ गुणहानि भी असंख्यात लोक है, उसके अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां जाने पर, देखो 16 के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानियां गई, यानी कितनी गई, चार गुण, तो स्थान कितने गए, चार गुणहानि आ गई, हाँ उतने स्थान गए ना, हाँ चार गुणहानि, अर्धच्छेद प्रमाण तो गुणहानि आ गई, तो स्थान कितने गए, हाँ तो चार गुणहानि का जो प्रमाण है हम 16 मानेंगे, वही बात आती है। अब हम पढ़ते फिर आगे, यथा 185 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, यथा यवमध्य के पूर्व प्रथम गुणहानि अध्वान से तदनंतर पूर्व का गुणहानि अध्वान अर्धभाग प्रमाण होता है। इस प्रकार परमाणु वर्गणा की प्रथम गुणहानि के प्राप्त होने तक प्रतिलोम विधि से ले जाना चाहिए। अनुलोम विधि से तो प्रथम गुणवृद्धि अध्वान से दूसरा गुणवृद्धि अध्वान दूना होता है। उल्टा आएंगे तो हम आधे आधे देखते हैं ना, हम देखते गुणहानि यहाँ क्या है, दुगुना दुगुना ही उतना ही लेना है। हम एक गुणहानि में अगर दो गुना होता है तो दूसरी गुणहानि में चार गुना होता है, यदि चार गुना के बदले हम दो गुना ही लेना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणहानि आधी करनी पड़ेगी, गुणहानि का अध्वान आधा आधा करना पड़ेगा। ये बात यहाँ बता रहे हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, प्रतिलोम ने उल्टा क्रम और अनुलोम ने नीचे से हाँ क्रम से, उल्टे क्रम से, तो ये गुणहानि अध्वान को दूना दूना या आधा आधा बता रहे हैं। इस प्रकार द्विगुण वृद्धि अध्वान यवमध्य के प्राप्त होने तक दूना दूना होकर गया है। ये दुगुण वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये दो गुना दो गुना दो गुना इतना ही काउंट करना उसमें। यद्यपि यहां पर यवमध्य से पूर्व गुणहानि में प्राप्त हुए सब वर्गणा प्रदेश द्विगुणहीन नहीं होते हैं, तो भी बालजनों को बोध करने के लिए बुद्धि से वे द्विगुणहीन होते हैं ऐसा ग्रहण करके उनकी प्ररूपणा की है। यवमध्य के ऊपर भी इसी प्रकार बुद्धि से द्विगुणहीन पने का संकल्प करके कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र उपरिम गुणहानि अधवान असंख्यात लोक और संख्यात अंक प्रमाण है। नीचे का अधवान और ऊपर का अधवान उसकी बात करें, उपरिम गुणहानि अधवान सर्वत्र समान नहीं होते क्योंकि यवमध्य से जितने स्थान आगे जाते हैं उनके संकलन से दूने प्रक्षोपों की सर्वत्र ध्रुव रूप से हानि देखी जाती है। अब इसी जो अभी हमने पढ़ा उसका विशेषार्थ बता रहे हैं और उसके लिए संदृष्टि भी दे रहे हैं। विशेषार्थ, यहाँ पर गुणहानि का प्रमाण 8 है, अतः डेढ़ गुणहानि 12। इतने स्थान जाने पर 1248 यवमध्य प्राप्त होता है। देखो इन्होंने संदृष्टि भी बनाने में कितनी बातें उन्होंने सोची होगी, है ना। डेढ़ गुणहानि स्थान जाने पर उन्होंने देखा यवमध्य आता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना पिछले पृष्ठ पर, अभी यवमध्य प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रथम गुणहानि नीचे से ऊपर समझाइए, जो पहले उन्होंने कही थी उसी को यहाँ फिर है। 256 को 1 से गुणा किया क्योंकि एक प्रदेशी है, वो 256 आ गए। 240 को 2 से गुणा किया, द्विप्रदेशी है, 480 आ गए। ऐसे ऊपर ऊपर हम देखते हैं, अंतिम वर्गणा 144 है, गुणहानि 8 की है ना, तो अंतिम वो 8 प्रदेशी वर्गणा है, इसलिए 144 गुणा 8 1152 आते हैं। द्वितीय गुणहानि में 128 है ऊपर और वो 9 प्रदेशी है, तो 1152 सेम आ गई संख्या। दूसरी वर्गणा वो 10 प्रदेशी होगी, वो 1200 आ गई। 11 प्रदेशी 112 मल्टीप्लाइड 1232 आ गए। 104 को 12 से गुणा करेंगे तो 1248 है, ये प्रथम यवमध्य आ गया। फिर 96 × 13 1248, दो यवमध्य आते हैं, बताया ना उन्होंने, तो उतनी संख्या आ गई। फिर नीचे क्रम से कम होते गया, देखो 1232 1200 1152। फिर आगे नीचे से ऊपर देखना त्रिगुणहानि में, वो क्रम से ऐसे कमती हो गया, चतुर्थ गुणहानि पंचम गुणहानि, वो अंतिम जो 9 जो है वहाँ तक वो विशेषहीन ही क्रम से होता गया है। एक बार यवमध्य आने के बाद ऊपर की जो गुणहानियाँ वो ज़्यादा है, पहले कम थी ऊपर ज़्यादा है। अब हम आगे पढ़ते हैं अंतिम लाइन 186 पृष्ठ की अंतिम लाइन। प्रथम यवमध्य से पूर्व 1232 1200 ये उल्टे क्रम से जा रहे हैं, 1152 1152 1120 1056 960 832 672 ये 9 स्थान जाकर यवमध्य निकटतम आधा 672 आता है। ये अनुलोम प्रतिलोम की बात की थी उन्होंने, तो 1248 का नियरली आधा उन्होंने लिया, लगभग आधा। द्वितीय मध्य यवमध्य से उत्तर यानी उसके पश्चात वाले उपरिम 1232 1200 1152 1088 1080 1064 1040 1008 978 920 864 800 780 758 728 696 660 और 620 ये 18 स्थान जाकर 620 यवमध्य का निकटतम आधा 620 आता है। ये क्या कहना चाहते हैं? देखो यवमध्य कहाँ पर है? 1248 1248 के हम नीचे की ओर आएंगे, तो आधे स्थान जाने के लिए कितने स्थान नीचे आ गए हम? 9 स्थान जाकर आधा हो गया। ऊपर की ओर कितने स्थान जाने पड़े? 18 स्थान जाने पड़े तब ये आधा हुआ, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, इस प्रकार संदृष्टि के अनुसार प्रदेशार्थ में यवमध्य से पूर्व की गुणहानि में 9 स्थान है। तभी गुणहानि कहा ना उसको, यवमध्य की अपेक्षा गुणहानि देखी। यवमध्य को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो दोनों ओर गुणित प्रमाण में हानि होगी, तो पहले गुणहानि होने के लिए नीचे 9 स्थान आने पड़े और ऊपर गुणहानि होने के लिए 18 स्थान जाने पड़े। उत्तर की गुणहानि में 18 स्थान है। अब हमने जो पढ़ा था ना उसको अभी पढ़ेंगे, विशेषार्थ के पहले वाला 186 पृष्ठ के ऊपर या 185 से यथा जो लिखा था वहां से फिर दोबारा पढ़ते, देखो उसका अर्थ अभी ज्यादा भाषित होगा। 185 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन जहां यथा लिखा है, यव मध्य के पूर्व प्रथम गुणहानि अध्वान से तदनंतर पूर्व का गुणहानि अध्वान अर्धभाग प्रमाण होता है। यहां तो एक ही अध्वान बता दिया उन्होंने 9 स्थानों का, उसके भी नीचे दूसरा जो स्थान, 9 स्थान आने पड़े ना, तो दूसरा यव दूसरे गुणहानि के लिए 4 स्थान में, 5 स्थान में वो आ जाएगा। इस प्रकार यहां तो संदृष्टि में एक ही गुणहानि में उन्होंने बता दिया, परंतु नीचे भी बहुत सारी होगी, तो 9 स्थानों में गुणहानि हुई, फिर और पूर्व में आ गए तो उसके भी आधे स्थानों में गुणहानि होगी, उसके पहले आते हैं तो उसके आधे स्थानों में गुणहानि मिल जाएगी। प्रतिलोम से आ रहे, कहां से, यव मध्य से नीचे की ओर आ रहे, तो आधे आधे स्थान पर वो गुणहानि गुणहानि होती है। इस प्रकार परमाणु वर्गणा की प्रथम गुणहानि के प्राप्त होने तक प्रतिलोम विधि से ले जाना चाहिए, यानी यव मध्य से नीचे की ओर, प्रतिलोम का अर्थ है यव मध्य वाले स्थान से नीचे। अब अनुलोम विधि से यानी यव मध्य से ऊपर, अभी जो हमने 18 स्थान मापे थे हाँ उसकी बात यहाँ कहेंगे। अनुलोम विधि से तो प्रथम गुणवृद्धि अध्वान से दूसरा गुणवृद्धि अध्वान दूना होता है। यहाँ पर हमें तो 18 स्थान लगे, तो दूसरी बार आधे होने के लिए 36 स्थान लगेंगे। इस प्रकार द्विगुणवृद्धि अध्वान यव मध्य के प्राप्त होने तक दूना दूना होकर गया है। यद्यपि यहाँ पर यव मध्य से पूर्व गुणहानि में प्राप्त हुए सब वर्गणा प्रदेश द्विगुणहीन नहीं होते, एग्जैक्टली आधे नहीं होते, तो भी बाल जनों को बोध कराने के लिए बुद्धि से वे द्विगुणहीन होते हैं ऐसा ग्रहण करके उनकी प्ररूपणा की है। अभी इसका अर्थ ख्याल में आता है ज्यादा। यव मध्य के ऊपर भी इस प्रकार बुद्धि से द्विगुणहीन पने का संकल्प करके कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र उपरिम गुणहानि अध्वान असंख्यात लोक और संख्यात अंक प्रमाण है, ऊपर ऊपर के जो है असंख्यात लोक प्लस संख्यात ऐसा कुछ। उपरिम गुणहानि अध्वान सर्वत्र समान नहीं होते, क्योंकि यव मध्य से जितने स्थान आगे जाते हैं उनके संकलन से दूने प्रक्षेपों की सर्वत्र ध्रुव रूप से हानि देखी जाती है, उसमें कुछ प्रक्षेप और कम हो जाते हैं। अब यहाँ आते 187 पृष्ठ पर, एक नया पैराग्राफ, ये जो प्रक्षेप वहां बताए ना उसकी बात यहाँ बताएंगे। अब यव मध्य से उपरिम प्रक्षेपों के निकालने की विधि का कुछ कथन करते हैं। यथा वहां बताए ना कि वो गुणहानि का अध्वान समान रूप से डबल नहीं होता है, उसमें कुछ प्रक्षेपों की हानि होती है। यथा यव मध्य के द्रव्य को एक अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर यव मध्य प्रदेशाग्र होता है, क्योंकि हमने क्या देखा था, डेढ़ गुणहानि प्रमाण स्थान जाने पर वो होते हैं ना, पुनः यव मध्य के द्रव्य को स्थापित कर दो अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर यव मध्य द्रव्यार्थता की अपेक्षा एक अधिक प्रदेशाग्र होता है। पुनः यव मध्य द्रव्यार्थता से उपरिम द्रव्यार्थता में एक प्रक्षेप हीन है। अब यहाँ हमने द्रव्यार्थता कितनी देखी थी, देखो जहाँ यव मध्य आया था 1200, हाँ हाँ देखो फिर से पढ़ते यथा से यव मध्य के द्रव्य को, अभी यव मध्य का द्रव्य कितना है अपनी संदृष्टि में देखना, हाँ 12 है द्रव्य हाँ। एक अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर यव मध्य का द्रव्य कितना है वहां पर? एक सौ चार है ना, वहां बारह प्रदेशी है, बारह प्रदेशी कहो, एक अधिक डेढ़ गुणा नहीं है ना, वो तेरह से गुणा करना पड़ेगा उसको। हाँ, यवमध्य प्रदेशाग्र होता है। पुनः यवमध्य के द्रव्य को स्थापित कर दो अधिक डेढ़ गुणाने से गुणित करने पर यवमध्य द्रव्यार्थता की अपेक्षा एक अधिक प्रदेशाग्र होता है। नहीं, उसमें हम संदृष्टि में वो घटित नहीं होगा, हम तो पहले पढ़ेंगे, पहले इसका भी विशेषार्थ दिखाएंगे शायद आगे। हाँ, विशेषार्थ आगे है, संदृष्टि में बताएंगे, जैसे हम संदृष्टि के बाद इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे जरूरत पड़े तो। हाँ, अभी अभी तो पढ़ रहे थे, ये चौथी लाइन पर आए। पुनः यवमध्य द्रव्यार्थता से उपरिम द्रव्यार्थता में एक प्रक्षेपहीन है, इसलिए डेढ़ गुणहानी से यवमध्य द्रव्यार्थता के द्रव्यर्थता हुआ है, द्रव्यार्थता पाई जी। देखो, यवमध्य की द्रव्यार्थता का अर्थ क्या होता है वहां पर, उसमें द्रव्य कितने हैं, वर्गणाएं कितनी हैं। जैसे हमारे यवमध्य में 104 है और 112 वगैरह थी, और आगे 96 हो जाती है, विशेषहीन होती है ना आगे आगे, तो द्रव्यार्थता में एक प्रक्षेपहीन है, इसलिए डेढ़ गुण हानि से यवमध्य द्रव्यार्थता के भाजित करने पर एक प्रक्षेप होता है। यवमध्य प्रदेशार्थता को भाजित करना डेढ़ गुणहानि से, ने 12 से भाग देना उसको। पुनः अभी संदृष्टि में बाद में बताएंगे, अभी हम संदृष्टि में नहीं जाएंगे, पहले पढ़ लेंगे। पुनः उसे दो अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर ऋण स्वरूप प्रदेशाग्र होता है। प्रदेशों में जो हमने देखा ना, 1248 से 1232 हो गए, तो वो ऋण उसका स्वरूप आ गया। वहां द्रव्यार्थता के दो प्रक्षेप लेकर पृथक स्थापित करके शेष गुणकार और भागहार समान है, इसलिए अलग कर देने पर यवमध्य की द्रव्यार्थता होती है। इस प्रदेशाग्र को पहले के प्रदेशाग्र में से कम कर देने पर यवमध्य के प्रदेशाग्र के समान प्रदेशाग्र होता है। ये तो दो समान हो गए उसकी बात है। पुनः वहां पृथक स्थापित हुई द्रव्यार्थता के दो प्रक्षेप मात्र प्रदेशों के अलग करने पर यवमध्य से अनंतर उपरिम वर्गणा का प्रदेशाग्र होता है। पुनः यवमध्य से ऊपर तीसरी वर्गणा का प्रदेशाग्र यवमध्य के प्रदेशों से द्रव्यार्थता के छह प्रक्षेप मात्र प्रदेशों से हीन होता है। चतुर्थ वर्गणा का प्रदेशाग्र 12 प्रक्षेप मात्र प्रदेशों से हीन होता है। इस प्रकार जितने स्थान आगे गए हैं उनके संकलन से गुणित दूने द्रव्यार्थता रूप प्रक्षेपों से हीन होता है हुआ वर्गणाओं का प्रदेशाग्र ऊपर जाता है। इतनी विशेषता है कि जहां पर द्रव्यार्थता के प्रक्षेप समान नहीं होते, वहां उनकी अलग से संकलना करके शिष्यों को ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार यवमध्य के ऊपर सब गुणहानियों का अध्वान पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण होता है। ऐसा होता हुआ भी विशेष हीन ही होता है, सदृश नहीं होता। ऊपर के जो गुणहानी अध्वान है वो सदृश नहीं है, क्योंकि यवमध्य को देखते हुए द्रव्यार्थता के प्रक्षेपों में अवस्थित क्रम से हानि उपलब्ध नहीं होती, यानी वो रेगुलर हानि नहीं है, अवस्थित नहीं है। इसका आशय यह है कि द्रव्यार्थता के प्रक्षेपों के अवस्थित रूप से एक एक गुणहानि में अपने अपने स्वरूप से घटने पर और गुणकारों के सर्वत्र एक अधिक के क्रम से जाने पर गुणहानि अध्वासनों के सदृश रूप होने का कारण नहीं है। इससे गुणहानियों का अध्वान विसदृश ही होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार अनंत रूप निधा समाप्त हुई। ये प्रदेशार्थता की अपेक्षा से बात कर रहे थे। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा ना, कुछ समझ में तो नहीं आया हमारे भी, तो हम विशेषार्थ पढ़ेंगे, वो संदृष्टि पर घटित करेंगे तो समझ में आएगा। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं। संदृष्टि में द्वितीय गुणहानि में द्रव्यार्थता का द्रव्यार्थता करना। द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 8 है, इसका दुगुना 16 है। ये द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 8 है, इसका अर्थ समझ में आता है। दूसरी गुणहानि निकालना 186 पृष्ठ पर भी है ना, 85 पर भी है, 86 पर भी है। द्वितीय गुणहानि का पहला द्रव्यार्थता कितनी है, 128 है, और हाँ दूसरे आगे वाली द्रव्यार्थता 120 है। तो वहाँ का प्रक्षेप कितना, डिफरेंस कितना है, 8 का है, इसका दुगुना 16 है। 8 का दुगुना 16 होता है, प्रक्षेप का दुगुना, क्योंकि उन्होंने वो रूल में कुछ बताए थे कि वो प्रक्षेप को दुगुना वगैरह कुछ करके। हम अभी पूरी संदृष्टि पढ़ेंगे हैं, इसका दुगुना 16 है। यो मध्य 1248 के पश्चात प्रथम प्रदेशार्थता 1232 है, जो यवमध्य से एक दुगुना प्रक्षेप कम है। यवमध्य 1248 में से 1232 कम करेंगे तो 16 आती है, यानी कितना कम हुआ, द्रव्यार्थता के प्रक्षेप जो है, द्रव्यार्थता का जो प्रक्षेप उसको दुगुना करना, उतने प्रदेशाग्रह कम है। प्रदेशार्थता कितनी कम है, हाँ तो उसको कैसे कहेंगे, द्रव्यार्थता का जो प्रक्षेप है उसको दुगुना करने पर उतने कम है। दूसरी प्रदेशार्थता 1200 है, जो यवमध्य 1248 से 1+2 तीन दुगुने प्रक्षेपों से हीन है। तीन कैसे निकाले, दो का संकलन धन 3 है, वो 3 को दुगुना करना। यवमध्य के बाद पहला जो स्थान है, एक स्थान है तो एक को दुगुना करो, 2 हुए तो 2 प्रक्षेप कम किए। 1248 में से 2 प्रक्षेप, 8 × 16 कम किए। अब दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान 2 संख्या का संकलन धन कितना है, 1+2 तीन को दुगुना करना, तो 6 प्रक्षेप कम करना। तो 6 यानी 8 × 48 हो ना, 48 हीन करना तो 1200 आ गए। अब तीसरी प्रदेशार्थता हम वहां नहीं देखेंगे, हम ही निकालेंगे ना। तीसरी प्रदेशार्थता के लिए क्या करना हमको, तीसरा स्थान है, 3 का संकलन कितना होता है, 3×12 = 6, हाँ 3 का संकलन धन 6 को दुगुना करना, 12 आ गए। और हमारे द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 8 है, 12×96, तो हमारे 1248 जो यवमध्य है उसमें से 96 कम कर देना, 1152 आते हैं। अब इसको पढ़ेंगे, देखो चौथी लाइन में अंत में तीसरी प्रदेशार्थता 1152 है, जो यवमध्य से 1+2+3 ये 3 का संकलन धन निकाला, 6 दुगुने प्रक्षेप, जितना संकलन स्थान है ना उसका संकलन निकालना पहले और उसको दुगुना करना, और उतने प्रक्षेप लेना। तो 6 गुना 8 गुना 2 96 अर्थात 1248 में से 1152 कम करते तो 96 कम है। अभी चौथी प्रदेशार्थता निकालेंगे हम, वो वहाँ पढ़ने के पहले। चौथी प्रदेशार्थता में 4 का संकलन धन कितना होता है? अभी हमने 6 निकाला था, उसमें और 4 मिला दो, 10 होते हैं। 10 को दुगुना करना 20 हुए, और 20 गुना 8 160, 1248 में से 160 कम कर देना। अब पढ़ेंगे देखो, चौथी प्रदेशार्थता 1288 है, जो यौ मध्य से 1 अधिक 2 अधिक 3 अधिक 4 वो 10 आ गए, तो 10 दुगुने प्रक्षेप यानी 10 गुना 16, दुगुना प्रक्षेप 16 होता है, तो 160 आ गए। अर्थात 1248 उसमें से 1288 बात करेंगे तो 160 कम है। 1288 तृतीय गुणहानि की प्रथम प्रदेशार्थता है, और पंचम प्रदेशार्थता 1280 तीसरी गुणहानि की द्वितीय प्रदेशार्थता है। देखो यहाँ देखना अपने 186 पृष्ठ पर क्या बताते हैं, तृतीय गुणहानि की प्रथम प्रदेशार्थता। अच्छा 1280 है ये, तृतीय गुणहानि की प्रथम प्रदेशार्थता बता रहे हैं। 1280 आ गई, 1288 आ गए, यौ मध्य से हम नीचे आ गए ना। देखो यौ मध्य से 1 स्थान आ गए, 2 स्थान आ गए, 3 स्थान आ गए, 4 स्थान नीचे आते तो यहाँ पर आ गए, तृतीय गुणहानि में आ गए हम। ये चौथी प्रदेशार्थता जो हमने निकाली थी वही तृतीय गुणहानि की प्रथम प्रदेशार्थता है, बराबर है ना। और तृतीय गुणहानि की द्वितीय प्रदेशार्थता कहो या यौ मध्य से पंचम प्रदेशार्थता कहो तो 1280 आती है। तीसरी गुणहानि में द्रव्यार्थता दुगुना प्रक्षेप 8 है, क्योंकि अभी गुणहानि बदल गई। हाँ तभी यहाँ की जो द्रव्यार्थता दुगुना प्रक्षेप, क्योंकि यहाँ का प्रक्षेप जो है वो 4 है। देखो द्वितीय गुणहानि में प्रक्षेप कितना था, द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 8-8 था, क्योंकि 128 120 112 104 8 के 8 डिफरेंस था। तृतीय गुणहानि में 64 60 56 52 इस तरह से है, यानी वहाँ का चय कितना है, 4 का है, यानी वहाँ द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 4 है। तो हमारे रूल क्या है, दुगुना प्रक्षेप, द्रव्यार्थता का दुगुना प्रक्षेप लेना है। तो तीसरे गुणहानि की जो पहली हमने देखी थी प्रदेशार्थता 1288 थी, तो तीसरी गुणहानि में जो दूसरा जो है वहाँ की द्रव्यार्थता, वहाँ की प्रदेशार्थता कितनी होगी, तो दुगुना प्रक्षेप, यहाँ का प्रक्षेप है 4, 4 का दुगुना 8, 1288 में से 8 गए तो 1280 आ गए। देखो अभी तीसरी गुणहानि के प्रथम प्रदेशार्थता से 1 स्थान आगे जाने पर 1280 प्रदेशार्थता प्राप्त होती है, जो 1288 में 1280 बात करने पर 8, एक दुगुण प्रक्षेप कम है, क्योंकि यहाँ का प्रक्षेप 4 है और दुगुण प्रक्षेप 8 हो जाता है। हाँ मयंक भाई ख्याल में आता है। हाँ तीसरी गुणहानि में प्रथम प्रदेशार्थता से यानी 1288 से 2 स्थान आगे जाने पर 1264 प्रदेशार्थता है, वो कैसे निकालेंगे हम, दूसरा स्थान है ना, अभी दो स्थान आगे गए हैं, तो दो का संकलन धन होता है तीन, तीन को दुगुना करो छः, और छः गुना चार। जो प्रथम प्रदेशार्थ था, आठ से नहीं, साई चौक चौबीस, प्रथम प्रदेशार्थ था 288 से 1+2 ये तीन हो जाते, तीन दुगुना प्रक्षेप, तीन गुना दो छः होते हैं, छः चौक चौबीस, अर्थात 288 में से 264 गए तो 24 कम है। जैसे द्विगुण दूसरे गुणहानि में हमने रूल बताया था, वैसे यहाँ पर भी समझना। इसी प्रकार आगे भी संकलन करके द्रव्यार्थता के प्रक्षेप से गुणा करके हानि का प्रमाण जान लेना चाहिए। आगे आगे जितने जाएंगे स्थान, उसका संकलन करना, उसको दुगुना करना, उसको प्रक्षेप से गुणा करना, उतना आ जाएगा। अब प्रदेशों का आश्रय लेकर यवमध्य से नीचे परंपरोपनिधा का कथन करते हैं। अनंतरोपनिधा में एक एक स्थान की बात की, परंपरोपनिधा में एकदम डायरेक्ट हानि की बात करेंगे। 189 निवासी क्या कहते हैं उसको, यहाँ कहते यथा परमाणु पुद्गल द्रव्य वर्गणा से द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा प्रदेशाग्र की अपेक्षा कुछ कम दूनी है। ये पहले हमने देखा था, कितनी न्यून है, द्रव्यार्थता के दूने प्रक्षेप मात्र से न्यून है। जैसे हमने देखा था कि पहले कितने देखे हमने, 256, 256 से दुगने कितने होने चाहिए थे, 512, परंतु 512 के बदले कितने दुगुने प्रक्षेप कितने होते, 16, हाँ तो 16 कम, दुगुने प्रक्षेप कितने हो गए, दुगुने प्रक्षेप मात्र द्व्यर्थ द्रव्यार्थता के दुगुने प्रक्षेप मात्र से न्यून है, यह नीचे दिया है, वहां का प्रक्षेप 16 का है ना, द्वितीय गुणहानि का 8 था प्रक्षेप, पहले गुणहानि में 16 का है, तो 16 ने 32 कम करना उसमें से, तो 480 हो जाएगी। प्रेरणा में ख्याल में आता है, पहले गुणहानि में चय का प्रमाण 16 है ना, तो 16 को दुगुना करना है। हाँ, देखो दूसरी लाइन, यहाँ कुछ कम की विवक्षा न कर दूनी ही है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, उसको दुगुना बताएंगे। द्विप्रदेशी वर्गणा से चतुप्रदेशी वर्गणा कुछ कम दूनी है। अब ये तीन वाले को छोड़ा बीच में, यानी द्विप्रदेशी चतु वाले वो कुछ कम दुगुनी है। कितनी न्यून है, 8 प्रक्षेप मात्र न्यून है। पहले की कंपेयर करेंगे तो चतुर्थ में कितना होता है, तो संकलन को दुगुना करते हम, 4 का संकलन कितना होता है, 10 होता है ना, 4 का संकलन 10 होगा, 10, और यहां कितने हैं, 8 प्रक्षेप मात्र न्यून है। किसके कंपेयर में, दूसरे के कंपेयर में, दूसरे में कितने प्रक्षेप कम थे, पहले से दूसरे में, यानी दो प्रक्षेप कम थे वहां पर, उसकी अपेक्षा आगे के कितने कम है ऐसा लेना है। हाँ, क्योंकि वहां के आगे कितने स्थान गए, दो ही स्थान आगे चले गए, तो 8 प्रक्षेप मात्र न्यून है। चतुप्रदेशी वर्गणा से 8 प्रदेशी वर्गणा कुछ कम दूनी है, कितनी न्यून है, 32 प्रक्षेप मात्र न्यून है। इस प्रकार यव मध्य के प्राप्त होने तक आगे भी जाननी चाहिए। वो प्रक्षेप की बात वहां नीचे उदाहरण लेके समझाएंगे। इतनी विशेषता है कि परमाणु वर्गणा से लेकर जघन्य परिता संख्यात प्रदेशी वर्गणा के प्राप्त होने तक, यानी असंख्यात प्रदेशी तक जो संख्यात वर्गणाएं हैं, उतनी वर्गणाएं जाकर द्विगुण वृद्धियां होती है। इसलिए संख्यात प्रदेशी वर्गणाओं में संख्यात ही द्विगुण वृद्धियां उत्पन्न होती हैं। एक द्विगुण वृद्धि, दो गुण वृद्धि, ऐसे कितनी कितनी बार हमने देखी थी ना, कितनी होगी, जैसे दूसरे स्थान पर दुगुना हो गई, फिर चौथे में और उससे दुगुना हुए, फिर आठवें में और दुगुना हुए, फिर सोलहवें में और दुगुना हुए। वो तो जो किंचित नहीं उन्हें उसको उन्होंने निग्लेक्ट किया। तो ऐसे द्विगुण वृद्धियां कितनी बार होगी, असंख्यात वृद्धि जहां तक नहीं होती, असंख्यात प्रदेशी वर्गणा जब तक नहीं होती, उत्कृष्ट संख्यात है ना, उसके बाद असंख्यात होगी। कौन सा असंख्यात? जघन्य परिता संख्यात। तो जघन्य परिता संख्यात प्रदेशी वर्गणा तक ये जो दुगुनी दुगुनी वृद्धियां कितनी होगी, कितनी हो सकती है, संख्यात होगी कि असंख्यात होगी? संख्यात ही होगी, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी का तो पहला स्थान आया है। अब मान लेते 100 तक कितनी होगी, नहीं, जैसे एक बार दुगुनी वृद्धि दूसरे स्थान पर हुई, फिर दुगुनी वृद्धि चौथे स्थान पर हुई, फिर आठवें स्थान पर हुई, फिर सोलहवें स्थान पर हुई, 32वें और 64वें, बस ना, तो कितनी हुई, 5-6 जो कुछ हुए। वैसे जब असंख्यात प्रदेशी वर्गणा प्राप्त हुई उसके पहले कितनी होगी, तो संख्यात होगी, हमें उसकी संख्या नहीं काउंट करनी, संख्यात होगी इतनी समझना है। देखो नीचे से उसमें छठी लाइन, इसलिए संख्यात प्रदेशी वर्गणाओं में संख्यात ही द्विगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। ये आसान है ना समझने में, उसका उदाहरण तो हम बाद में देखेंगे। उसके ऊपर एक 189 पेज पर, वो ऊपर के पैराग्राफ के नीचे की छठी लाइन मैंने अभी पढ़ी, इसको हम फिर पढ़ेंगे दोबारा। हाँ, उसके ऊपर असंख्यात वर्गणाएं जाकर द्विगुण वृद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार असंख्यात द्विगुण वृद्धियां ऊपर जाकर यवमध्य उत्पन्न होता है। यवमध्य के नीचे ये दुगुनी दुगुनी जो वृद्धि होती है उसका प्रमाण बता रहे हैं। यवमध्य से ऊपर, यानी जैसे हमने वो प्रतिलोम रूप से बताया था, वहां हानि बताई थी, उन्होंने बताया था इतने स्थान नीचे हम यम, अपने उदाहरण में 9 स्थान नीचे आए तब एक हानि हुई, एक द्विगुणी हानि हुई, फिर और उसके आधे उसके आधे उसके आधे, इस तरह से हम देखा था नीचे। तो यहाँ कहते हैं असंख्यात द्विगुण वृद्धियां जाने पर यवमध्य होता है। यवमध्य से ऊपर ध्रुव स्कंध में अनंत वर्गणाएं जाने तक गुणहानि अध्वान असंख्यात लोक प्रमाण होता है, यानी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने पर वो गुणहानि होती है। उसके ऊपर संख्यात वर्गणाएं जाकर द्विगुण हानि होती है। इस प्रकार ध्रुव स्कंध में अनंत वर्गणाओं के व्यतीत होने तक ये गुणहानियां जाती है। इसके आगे जानकर कथन करना चाहिए, अभी जो हमने अभी पढ़ा उसका फिर उदाहरण लेके समझाते हैं। अंक संदृष्टि में परमाणु द्रव्य वर्गणा के प्रदेशाग्र 256 है, प्रदेशों की बात चल रही है। द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा के प्रदेशाग्र 480 है। प्रक्षेप है वहां का 16, क्योंकि पहले गुणहानि में चय का प्रमाण 16 है, तो द्रव्यार्थता का प्रक्षेप 16 कहेंगे हम। तो 256 को 2 से गुणा करते हैं, क्यों 2 से गुणा किया, क्योंकि हमें द्विप्रदेशी देखनी है, तो 512 आते हैं, परंतु 512 के बदले में 2 प्रक्षेप कम हो गए, तो दो प्रक्षेप यानी 16 × 32 कम होते तो 480 होते हैं। अब त्रिप्रदेशी को छोड़ा, चतुप्रदेशी वर्गणा के प्रदेशाग्र 832 है, तो जो 480 है ना वो दुगुने होते हैं ऐसा कहेंगे हम, तो 480 को दुगुना करेंगे तो 960 होते हैं, परंतु 960 के बदले में वो हमने देखा था वहां तो हाँ प्रक्षेप 8 प्रक्षेप मात्र कम होती है ऐसा कहा था, तो 8 प्रक्षेप ने सोलियडी 28 आसे 832 हो गए। 960 में से देखो 480 थे वो डबल यानी 960 होने चाहिए थे, उसके बदले 8 प्रक्षेप कम है, 832 हो गए। 8 प्रदेशी वर्गणा के प्रदेशाग्र 1152 है, वो तो जो 832 है ना तो वो दुगुने होने चाहिए थे, तो 1664 होने के बदले वहां 32 प्रक्षेप कम है तो 1152 ही हो गए। यहां 3 अनुयोग द्वार होते हैं, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्प बहुत्व। प्ररूपणा की अपेक्षा वहां तो है इतना ही कहेंगे, क्या कह रहे हैं, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर है और नाना प्रदेश गुणहानि शलाकाएं भी है, यानी एक गुणहानि भी है और नाना गुणहानि शलाकाएं भी है। प्रमाण, एक प्रदेश गुणहानि अध्वान संख्यात वर्गणाओं और असंख्यात वर्गणाओं का होता है, यह अध्वान चेंज होता है, विसदृश होता है, पहले हमने देखा था, असंख्यात लोक का भी होता है और फिर वो संख्यात स्थानों का भी हो सकता है, तथा नाना गुणहानि शलाकाएं यो मध्य के नीचे असंख्यात है और ऊपर कितनी है, अनंत है। अल्पभूत, क्योंकि यो मध्य कहां पर आता है, असंख्यात लोक स्थान जाने पर यो मध्य आता है, असंख्यात प्रदेशी में आता है यो मध्य, और नीचे एक प्रदेशी तक ही आना है, वहां तो असंख्यात ही होगी, हाँ असंख्यात ही गुणहानियां होगी, और ऊपर कहां तक जाना है, वो ध्रुव स्कंध के अनंत स्थानों तक जाना है, तो बीच में सारी जो है ना 14 वर्गणाओं की बातें, अनंत प्रदेशी, फिर आहार वर्गणाएं, फिर ये सब बीच वाले अग्राह्य वर्गणाएं सब पार करके ध्रुव स्कंध वर्गणा के भी अनंत अनंत स्थान चले जाएंगे, तो ऊपर की गुणहानियां भी नाना गुणहानियां भी अनंत है। अल्प बहुत्व, एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर सबसे स्तोक है, इससे नाना प्रदेश गुणहानि शलाकाएं अनंत गुणी है। एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर करता होता है, एक गुणहानि जो है वो छोटी है और नाना गुणहानि शलाकाएं वो अनंत है। इस प्रकार परम परोपनिदा समाप्त हुई। अवहार दो प्रकार का है, अवहार का अर्थ होता है भागाकार, हाँ। द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता, उनमें से द्रव्यार्थता की अपेक्षा परमाणु वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं का द्रव्य कितने काल द्वारा अपहृत होता है, परमाणु वर्गणा की प्रमाण की करने पर, तो कहते असंख्यात लोकमात्र 1.5 गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है, यथा द्वितीय आदि सब गुणहानियों को प्रथम गुणहानि के प्रमाण से करने पर वे सब प्रथम गुणहानि प्रमाण होती है, पुनः प्रथम गुणहानि के द्रव्य को परमाणु वर्गणा के प्रमाण से करने पर परमाणु वर्गणा का 3/4 भाग प्रमाण विस्तार वाला और 1 गुणहानि आयाम वाला क्षेत्र होता है, यानी पूरे पहले गुणहानि का जो द्रव्य है, पहले गुणहानि का द्रव्य नहीं उसकी टोटल करनी हमको, प्रथम वर्गणा हमने 256 देखी, फिर आगे आगे की जो प्रदेशार्थता है उसकी अगर हम टोटल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो परमाणु वर्गणा का 3/4 भाग मल्टीप्लाइड बाय 1 गुणहानि, ये उन्होंने करके बताया। पुनः द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य को भी परमाणु वर्गणा के प्रमाण से करने पर यह भी पहले के क्षेत्र के समान होता है। पुनः यहाँ एक बटे चार भाग प्रमाण विष्कम्भ वाला और एक गुणहानि प्रमाण आयाम वाला क्षेत्र है, उसे ग्रहण कर पहले के क्षेत्र में जोड़ देने पर गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं उत्पन्न होती है। यानी दूसरे गुणहानि का 1/4 आया और पहले गुणहानि में हमने 3/4 देखा, दोनों मिलाकर गुणहानि प्रमाण होगी परमाणु वर्गणाएं। पुनः क्षेत्र को शेष क्षेत्र को बीच में फाड़कर पार्श्व भाग में जोड़ने पर यहाँ भी गुणहानि के अर्धभाग प्रमाण परमाणु वर्गणाएं उत्पन्न होती है। यहाँ उसके विशेषण दिया है कि नहीं दिया है? आगे लिखेंगे वो, हाँ पहले पढ़ लेते हम। हाँ क्षेत्र किया था, कहाँ पर हो गया अपना क्षेत्र को बीच में फाड़कर, हाँ पार्श्व भाग में जोड़ने पर यहाँ भी गुणहानि के अर्धभाग प्रमाण परमाणु वर्गणाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार डेढ़ गुणहानि प्रमाण परमाणु वर्गणाएं होती है, इसलिए डेढ़ गुणहानि से परमाणु वर्गणा के गुणित करने पर संदृष्टि की अपेक्षा सब द्रव्य का प्रमाण 3072 होता है। पुनः यहाँ डेढ़ गुणहानि 12 से सब द्रव्य के भाजित करने पर परमाणु वर्गणा 256 आती है। उसी को उल्टा बताया, पहले 256 को डेढ़ गुणहानि से गुणित करके सब टोटल द्रव्य जो है 3072 बताया, अब उल्टा करेंगे तो पहला परमाणु वर्गणा आती है। पुनः द्विप्रदेशी वर्गणा के प्रमाण से चाहिए, प्रमाण से देखो देखो उसके लिए हमने जैसा देखा था 190 पृष्ठ पर जो हमने शुरू किया था ना, वह हर दो प्रकार का है, उसमें लिखा था उनमें से द्रव्यार्थता की अपेक्षा परमाणु वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं का, वैसे यहाँ द्विप्रदेशी वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य कितने काल के द्वारा अपहृत होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, टोटल द्रव्य 3072 है, उसको 256 के प्रमाण से करना है, 256 का भाग दे दो तो क्या होगा, डेढ़ गुणहानि आए। तो वहाँ कहा था कि डेढ़ गुणहानि काल से अपहृत होता है, डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है। यानी क्या है, 372 को डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो पहले परमाणु वर्गणा का प्रमाण आएगा। अब यहाँ क्या बात बता रहे हैं, द्वितीय वर्गणा द्विप्रदेशी की बात चल रही है, तो द्विप्रदेशी वर्गणा से सब द्रव्य को अपहृत करने पर कितने काल के द्वारा अपहृत होगी, ये भाषा अटपटी है। हमें क्या लेना है, टोटल द्रव्य 3072 और द्विप्रदेशी वर्गणा है 480, उसके प्रमाण से करने पर यानी उससे भाग देने पर क्या संख्या आएगी, डबल तो नहीं आएगी, पहले की, हाँ पहले 256 थी अब 480 आ गए। हाँ परंतु देखो द्विप्रदेशी वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य कितने काल के द्वारा अपहृत होता है, तो साधिक डेढ़ गुणहानि स्थानांतर काल के द्वारा अपहृत होता है, क्योंकि अभी भागाकार बढ़ेगा ना संख्या, वहां ये संख्या ज्यादा है तो वह भागार में बढ़ेगा। इसी प्रकार ऊपर भी जानकर ले जाना चाहिए, इतनी विशेषता है कि डेढ़ गुणहानि के अर्धच्छेदों से उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के अर्धच्छेदों के भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उसका विरलन करके उस विरलन राशि पर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात के अर्धच्छेदों को समान खंड करके देय रूप से देने पर एक एक विरल अंक के प्रति डेढ़ गुणहानि के अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी उसके अर्धच्छेदों को उसके अर्धच्छेदों से भाग देंगे। ये विरलन की भाषा आती है तो बहुत अटपटा हो जाता है, क्यों प्रेरणावेन? पुनः यहाँ पर एक कम विरलन प्रमाण अंकों के प्रति प्राप्त, डेढ़ गुणहानि के अर्धच्छेदों प्रमाण गुणहानियों के आगे जाने तक वह असंख्यात लोक प्रमाण काल के द्वारा अपहृत होता है, उसके आगे अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है। इस प्रकार असंख्यात भागहीन वर्गणाओं में अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पहले हमने देखा था ना विशेष अधिक विशेष अधिक यो मध्य, तो फिर विशेषहीन विशेषहीन चलता है, यानी असंख्यात भागहीन वर्गणा है, फिर संख्यात भागहीन वर्गणा है, फिर संख्यात गुणाहीन है, असंख्यात गुणाहीन है, ऐसे पहले हमने देखा था ना। तो वहां तक तो इसी क्रम से जाएंगे। उसके बाद संख्यात भागहीन वर्गणाओं की प्रथम वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य कितने काल के द्वारा अपहृत होता है, यानी वहां का भागहार क्या होगा, कितने काल के द्वारा अपहृत होता है, अनंत काल के द्वारा अपहृत होता है, यानी उसका प्रमाण अनंत आता है। यथा संख्यात भागहीन वर्गणाओं की प्रथम वर्गणा के प्रमाण से सब वर्गणाओं के द्रव्य में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे शलाका रूप से स्थापित करके पुनः उस वर्गणा के प्रमाण से सब द्रव्य के भाजित करने पर शलाका प्रमाण काल के द्वारा अपहृत होता है। इस प्रकार जानकर महास्कंद वर्गणा के प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। ये तो द्रव्यार्थता की अपेक्षा अवहार काल हुआ, यानी वहां 240 वगैरह वो हमने द्रव्यार्थता की अपेक्षा देखी थी। अब प्रदेशार्थता की अपेक्षा बता रहे हैं। अब प्रदेशार्थता की अपेक्षा अवहार काल का कथन करने पर सब द्रव्य को यवमध्य के प्रमाण से करते हैं। टोटल द्रव्य को यवमध्य के प्रमाण से करते हैं, यवमध्य की जो वैल्यू है उससे उसको भाग देंगे। यथा एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित, एक अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर, अभी द्वितीय गुणहानि वाला ये यवमध्य कहाँ है, द्वितीय अपने यहाँ द्वितीय गुणहानि में है, बराबर है। वहां का चय यानी वहां का प्रक्षेप कितना है, 8 है, पहले गुणहानि का 16 था। जहां यव मध्य दूसरी गुणहानि में अपनी संदृष्टि में, वहां का जो चय या प्रक्षेप कहो वो 8 है। हा? तो कहते एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित, एक अधिक डेढ़ गुणहानि से गुणित करने पर, यव मध्य का प्रमाण आता है। यानी यहां उन्होंने एक प्रक्षेप को डेढ़ गुणहानि से गुणित कर किया, यानी 8 ये गुणहानि है और डेढ़ गुणहानि ने 3/5 करना, उसका 8 का 3/5 करना कितना होता है, 12 होता है, डेढ़ गुणहानि 12 होती है ना। और एक अधिक डेढ़ गुणहानि उसके लिए भी उन्होंने वही वैल्यू ली, फिर दोबारा 13 × 12 तो 13 × 12 156 आ गए। तो दो प्रक्षेपों का प्रमाण है 16, 8 × 2 = 16 और 13 × 12 आते हैं 156, तो 156 × 16 2496, उसमें दो यव मध्य आते हैं 1248 और 1248। ये समझ में, डेढ़ गुणहानि मल्टीप्लाइड बाय एक अधिक डेढ़ गुणहानि, फिर उसको दो प्रक्षेप से गुणा करना, तो दो यव मध्य है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम दोनों यव मध्यों को, पुनः इसे गुणहानि के अर्ध भाग से गुणित करने पर इतना होता है। अभी जो वैल्यू आई उसको गुणहानि का अर्धभाग यानी 4 है, तो दो यौ मध्य 2496 को चार से गुणा करने पर ये 9984 आता है, जो द्वितीय गुणाने का कुल प्रदेशाग्रह है, दूसरे गुणाने का टोटल वैल्यू हुआ है, यानी गुणाने के प्रत्येक निशय की टोटल करेंगे तो इतनी आती है। परंतु इसमें यवमध्य से पूर्व के और बाद के तीन तीन निशेकों के प्रदेशाग्र जो प्रक्षेप यवमध्य की अपेक्षा हीन है, वे प्रक्षेप द्वितीय गुणहानि के सर्व प्रदेशाग्र से अधिक है। यानी वो जो हमने अभी देखा था, ये जो प्रक्षेपों की वैल्यू उसमें से कम करना चाहिए, अभी जो हमने वैल्यू निकाली है उसमें वो प्रक्षेप हीन किए नहीं है, तो उसका निकालना पड़ेगा। तो कहते यहाँ अधिक प्रदेशों का अपनयन करते हैं, यानी माइनस करते हैं उसको। यथा गुणहानि के अर्धभाग प्रमाण गच्छ के दूने संकलना संकलन प्रमाण प्रक्षेप यहाँ अधिक है। गुणहानि का अर्धभाग है चार, उसके दो गुणा संकलना संकलन। संकलना संकलन किसको कहते हैं? दो बार संकलन को। हाँ, देखो अभी यहाँ समझाएंगे, उसका कारण भी बताए थे। क्योंकि यव मध्य से पूर्व प्रक्षेप गुणकार की एकोत्तर वृद्धि देखी जाती है और अध्वान गुणकार की एकोत्तर हानि देखी जाती है, और गच्छ को एक अधिक गच्छ से गुणित करने पर द्विगुणे संकलन को छोड़कर अन्य का आगम संभव नहीं है, क्योंकि उसका निषेध है। यानी गच्छ मल्टीप्लाइड बाय एक अधिक गच्छ, अभी एक गुणहानि आठ, उसका आधा चार, यहां पर यह चार गच्छ है, चार का संकलन दस है, एक अधिक दो अधिक तीन अधिक चार, इसका दूना बीस है। अथवा गच्छ चार को एक अधिक गच्छ पांच से गुणा करने पर बीस आता है। ये संकलन को दूना करना है, इसलिए हमने जो चार का संकलन हम कैसा निकालते हैं, चार गुणा पांच डिवाइडेड बाय दो, उसको दो गुणा करना है, इसलिए वो दो दो चले गए, तो चार गुणा पांच आ गए डायरेक्ट। पर संकलन को दो बार लिया उन्होंने, दो बार संकलन नहीं लिया है, संकलन को दो बार किया है। पर पृष्ठ 185 की संदृष्टि के देखने से ज्ञात होता है यवमध्य 1248 से दूसरा निषेक 1232 दो प्रक्षेपहीन है, क्योंकि वहां पर द्रव्य प्रक्षेप का प्रमाण 8 है। तीसरे निषेक का प्रदेशाग्र 1200 है, जो यवमध्य से 6 प्रक्षेप यानी 48 कम है। 6 गुना 8 चाहिए, 6 अधिक हुआ है ना, इसको कल पढ़ना पड़ेगा। फिर अभी मैं पढ़ लेती हूँ दो लाइन। चौथे निषेक का प्रदेशाग्र 1152 है, जो यवमध्य 1248 से 12 प्रक्षेप कम है, यानी 12 गुणा 8 96 कम है। इस प्रकार 2 प्लस 6 प्लस 12 20 प्रक्षेप आते हैं। ये 20 प्रक्षेप ऊपर व नीचे दोनों स्थानों में हीन है, अतः 20 द्विगुण प्रक्षेप हुए। इन 20 द्विगुण प्रक्षेपों, दो गुणा करना है ना उसको, तो 40 प्रक्षेप लेने पड़ेंगे, तो 320 हो जाते हैं। इसको 984 में से कम करने पर, 984 में से 320 बात करने पर 96 से 64 द्वितीय गुणहानि के प्रदेशाग्र का प्रमाण होता है। ये उन्होंने नीचे के और ऊपर के जो 20-20 प्रक्षेपों की वैल्यू कम की, जो उसमें अधिक माने गए थे, ये बात उन्होंने यहाँ समझाई उदाहरण के द्वारा। अब यहीं रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते प्रेरणा बेन।